Sidhu Moosewala, Bohemia, Brown Boys in the building. Shout out Big Bird. You know what time it is.
I'm a brown boy.
तो आप सब ने सिद्धू मूसेवाला के बारे में सुना है कि क्या हुआ. काफ़ी ज़्यादा एक ट्रैजिक एंडिंग रही इतने फेमस एक सिंगिंग आइकन की. इनफैक्ट मैं भी उसका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ. तो इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग कि क्या हुआ उसके साथ. एंड तो मैंने कई पॉडकास्ट एपिसोड्स बनाए हुए हैं ट्रू क्राइम के ऊपर और मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है इन माने व्हाट इज़ हैपनिंग इन दी क्राइम वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन दिस रीजन ऑफ दिल्ली एंड नॉर्थ इंडिया वाले जो होते हैं. तो थोड़े से दोस्तों वगैरह ने पूछा कि बाय एनी चांस तूने कभी रिसर्च की है ऑन ये कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई, कौन है ये गोल्डी ब्रार एंड ये सब. तो एक बहुत अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ उनकी कहानी. बट इन सब की ना कहानी काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है. वो आप न्यूज़ में भी जाके पढ़ सकते हैं कि ये गुंडों के साथ मिल गया कॉलेज में, वहाँ पे जाके इसने लड़ाइयाँ स्टार्ट की, फिर पहला मर्डर किया, फिर ये किया वो किया. तो दैट इज़ वेरी टिपिकल. आप कभी भी आप ऑनलाइन जाएंगे तो वो न्यूज़ आउटलेट्स वगैरह आपको ये सब कवर कर देते हैं. बट मैं इस एपिसोड में आपको बताना चाहता हूँ कि वॉट इज़ दैट अंडरलाइंग कल्चर क्या है, ये गैंग कल्चर क्या है. सो दैट विल नॉट ओनली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये कौन है लॉरेंस बिश्नोई, बट आपको ये भी समझ में आने लग जाएगा कि ये बनते कैसे हैं. और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई नहीं, माने जो 100 लॉरेंस बिश्नोई कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे वो इतना वायलेंट क्राइम कमिट कर सकते हैं. इतने बड़े सिंगर को ऐसे ओपनली मार देना, कहाँ से इतनी हिम्मत आती है. तो वॉट इज दैट कल्चर दैट यू नो ब्रिंग्स फोर्थ नॉट ओनली वन लॉरेंस बिश्नोई एंड वन गोल्डी ब्रार बट हंड्रेड्स ऑफ देम, राइट. तो सबसे पहले ना मैं आता हूँ कि यार ये लोग हैं कौन, लाइक गैंग्स हैं कौन से, करते क्या हैं, कौन हैं इनके लोग, कहाँ से जुड़े हुए रहते हैं. तो अगर आप देखेंगे ना कि ये लोग कौन हैं और कहाँ से आते हैं, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये. इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि थोड़ा डिसओरिएंटेड सा यूथ है, या तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है पैसे कमाने की और वो एग्जिस्टिंग गैंगस्टर्स को देखते हैं कि अरे वो तो इतना पैसे कमा रहा है एक दो मर्डर करके, अरे उसकी इतनी फ्लैशी लाइफस्टाइल है, उसके पास गाड़ियां हैं, ये है वो है. वो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों से, गलत चीज़ों से इंस्पायर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं से वो पॉवर्टी से निकलने के लिए वो वर्ल्ड ऑफ क्राइम में घुस जाते हैं, जैसे कि हर जगह होता है अक्सर. आई मीन कई जगह पे अलग अलग रीजंस होते हैं बट मोस्टली ये वाला रीज़न होता है. अब घुस गए तो आप एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि जो भी नॉर्थ इंडिया में है, पर्टिकुलरली इन दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर रीजन और पंजाब वगैरह में, यहाँ पे जो गैंग्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं. तो बॉम्बे वगैरह में अगर आपने सुना होगा पहले, तो वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन, और ये गिन के एक दो होते थे. तो जो छोटे छोटे गैंगस्टर्स भी और जो छोटे छोटे ग्रुप्स भी नीचे से उठ के आते थे, वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकते थे. उनको ज्वाइन करना होता था एक नए गैंग को एंड वहां के रूल्स के हिसाब से उनको फंक्शन करना होता था. यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं. यहाँ कोई, यहाँ तो 50 गैंग बने हुए हैं, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग. और ये अक्सर ना कहीं से ये सेम विलेजेस से होते हैं. इन्होंने कई बार स्कूलिंग साथ में की होती है या कॉलेज साथ में किया होता है, आपस में पहले दोस्त थे और कहीं ना कहीं से इन्होंने एक या दो गैंग को ज्वाइन कर दिया एंड वायलेंट है, तो कभी आपस में मार दिया. पहले 10 का ग्रुप था, आपस में दो ने मार दिया, तो अब 5-5 लोग अलग हो गए, अब एक की जगह और दो गैंग बन गए. तो ऐसे वो 50-60 छोटे छोटे गैंग्स बने हुए हैं. मैंने अपने पिछले एक पॉडकास्ट में नीरज बवाना का जो एपिसोड है, उसमें मैंने बोला भी है कि काफ़ी कम गैंग्स हैं और सिर्फ एक नीरज बवाना का गैंग है ये दिल्ली रीजन में, जो थोड़ा सा बड़ा बनता जा रहा है, जिसके पास 100-150 मेंबर्स हैं और छोटे छोटे गैंग्स आके उसमें जुड़ रहे हैं. पर वैसे ऐसा कल्चर है नहीं, यहाँ छोटे छोटे बहुत हैं एंड दैट इज़ वाई ना ये वायलेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं. तो अगर आप बॉम्बे में जैसे देखेंगे तो ऊपर कौन से लीडर्स बैठे हुए थे, ये छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम, ये सब एक नॉर्मल क्रिमिनल्स नहीं है, ये सब काफ़ी एंटरप्राइजिंग क्रिमिनल्स थे और काफ़ी कैलकुलेटिव क्रिमिनल्स थे. ये वायलेंस वहीं पे यूज करते थे जहां पे बहुत अल्टीमेटली नेसेसरी होता था. लेकिन यहां वाले ऐसा कोई है ही नहीं. यहां बस एक डिसओरिएंटेड सा यूथ है जिनको गन्स मिल गई हैं कहीं ना कहीं से और बस वो एक दूसरे को मारते रहते हैं. यहां पे कभी एक्सटॉर्शन, कभी वहां से एक्सटॉर्शन, कभी आपस में मारना. तो वो एक कल्चर काफी टाइम से डेवलप होता जा रहा है एक वायलेंस का. इसीलिए आप अगर यू नो आई एम नॉट सपोर्टिंग द क्राइम बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आपने किसी की बॉडी में जाके 30-40 बुलेट्स पंप की हैं तो इट इज़ जस्ट वायलेंट, राइट. तो एक तो यहाँ पे इस टाइप का कल्चर है, इस टाइप के लोग हैं और अगर आप गैंगलैंड कल्चर देखें तो यहाँ पे ये चीज़ होती है, इसलिए एक लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, ऐसे 100 बैठे हुए हैं जो आते हैं, बड़े होते हैं और ये सब क्राइम्स करने लगते हैं। तो और दूसरा पॉइंट अब ये आता है कि एक काफ़ी कल्चरल सा कॉन्सेप्ट है नॉर्थ इंडिया को लेके, वो है ईगो का और एक अग्रेसिवनेस का। तो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जो दिल्ली के लोग होते हैं या नॉर्थ इंडिया के जो पंजाब वगैरह के लोग होते हैं, वो थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, थोड़े से बहुत जल्दी यू नो प्रोवोक्ड हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए, थोड़े से वायलेंट होते हैं। तो वही एक एक्सटेंशन है, नॉर्मल लोग आपस में लड़ाई कर लेंगे यहाँ पे, कई बार हाथ वात भी चल जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पे एक्सटेंड होके यहाँ गन्स चल जाते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, आपस में दोस्ती होते हैं, लेकिन दोस्तों में लड़ाई हो गई, वहाँ पे ईगो बीच में आ गया, किसी ने एक को मार दिया, फिर दूसरे को मार दिया और वहीं से गैंग वॉरफेयर छिड़ गया। जो ये ईगो का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा प्ले करता है यहाँ पे। आपस में इनकी लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं कुछ ना कुछ ईगो को लेकर, लेना देना इन रियलिटी ज़्यादा कुछ नहीं होगा बट ईगो को लेकर होगा। और इसी केस में भी मैं आपको बता दूं कि अब ये न्यूज़ में आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू या उसी ने जेल वेल से जैसा भी है इसको फ़ोन किया था कुछ दिन पहले सिद्धू मूसेवाला को कि यू नो मुझे लग रहा है, जो भी है, तेरा नाम आया था मेरे दोस्त के मर्डर में, अब मैं भी तुझे मारूंगा। तो सिद्धू मूसेवाला ने भी रादर देन टेकिंग प्रिकॉशंस, रादर देन टेकिंग सिक्योरिटी, उसने ईगो में उसको कहा था कि जो करना है कर ले, मेरे पास भी बंदूकें रहती हैं, राइट। तो इट वॉज जस्ट अननेसेसरी। और आप देखेंगे भी तो उसके कोई मैनेजर किसी केस में नाम में इन्वॉल्व था सिद्धू मूसेवाला का। अब कहीं से सिद्धू मूसेवाला का नाम भी आया होगा, ये तो खैर आप पेपर्स में बाद में पढ़ेंगे, दीज आर वेरी अर्ली डेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बट आप समझ रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा आपस में ही लोग मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं से जानते हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, छोटे छोटे गैंग्स हैं, एंड देर इज अ लॉट ऑफ ईगो इन्वॉल्व, नॉट मच सब्सटेंस टू इट, राइट। तो इसलिए ये सब हो रहा है। और तीसरी चीज़, अगर इसी का एक एक्सटेंशन देखेंगे ना आप, तो ये धीरे धीरे करके ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट भी होते जा रहे हैं और ये टैक्टिक्स भी काफ़ी ज़्यादा सीख रहे हैं। अगर आपने इसका मर्डर देखा हो तो जो वीडियोस में दिखा रहे हैं, जो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है, प्रॉपरली गाड़ियों ने इसकी फॉलो किया है, प्रॉपरली इसको ब्लॉक किया है, और ब्लॉक करने के बाद जो है इसको प्रॉपरली वहां पे मारा गया है। सो ये सारी टैक्टिक्स आपको एक दिन में नहीं आती हैं, प्रॉबली अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी डन इट बिफोर, और धीरे धीरे करके ये सब प्रैक्टिस एस्टैब्लिश की जा रही है। तो इस चीज़ का जो है यहाँ पे ये भी एक चीज़ कल्चर में डेवलप हो रही है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर वायलेंट, राइट। और ईगो की बात में मैं आपके वापस आना चाहता हूं, तो इनका ईगो के लेकर एक और एक एक्सटेंशन होता है कि सबके ईगोज इतने बड़े हैं तो सब ना अपने आप को सबसे बड़ा माने बनाना चाहते हैं, माने कहलवाना चाहते हैं कि मैं नंबर वन गैंगस्टर ऑफ पंजाब, मैं नंबर वन ये यूपी। तो इसमें आप देखिएगा कि ये लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे इनके हैंडल्स बने हुए हैं अपने, जहाँ पे ये जेल से हो या कहीं पे भी बाहर हो, वहाँ से अपने फोटोज डालते रहते हैं गन्स के साथ, और टू शो दैट यू नो माचो कल्चर। और तो और इनके फैन पेजेस भी बने हुए हैं, विच इज़ अनदर डिस्टर्बिंग ट्रेंड, यहीं से और भी ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। वो और बड़े वो खुशी खुशी से अगर कोई न्यूज़पेपर उनके केस के बारे में डाल देता है ना, तो वो उसको बड़ी खुशी से प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे कि मैंने ये किया। एंड द डिस्टर्बिंग ट्रेंड अबाउट यू नो यूथ जॉइनिंग देम, इसकी आप उनके कमेंट्स देखिए तो पूरे के पूरे माने वहाँ पे लोग अरे यू नो दे आर रियली लाइकिंग देम एंड सपोर्टिंग देम एंड एवरीथिंग, कि भाई वी लव यू और ये सब। इनफैक्ट ये लोग फैंस जो हैं इनके फैन पेजेस बनाने लगे हैं कि टू सपोर्ट दीज क्रिमिनल्स। तो वहाँ पे और भी ज़्यादा ये सब लोग आते जा रहे हैं। That is why you could gather 12 people to, you know, kill one guy. जो बोला जा रहा है कि 10-12 लोग थे इसके मर्डर में। और उसी में आप एक और चीज़ नोटिस कीजिए कि ये ईगो का कितना बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है कि यार जब क्रिमिनल किसी को मारता है या कुछ एक क्राइम कमिट करता है तो वो छुपाने की कोशिश करता है, छुपने की कोशिश करता है। यहाँ पे ओपनली दे आर अनाउंसिंग इट कि हमने वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस मर्डर। लॉरेंस बिश्नोई के किसी पेज पे था और वहाँ से गोल्डी ब्रार ने अपेरेंटली अपने ही प्रोफाइल से पोस्ट किया था। ये सब चीज़ें ना पहले वो सब ग्रुप्स के साथ एसोसिएटेड होती थी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कि वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस बॉम्बिंग, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस असैसिनेशन। एंड अब यहाँ पे लोकल क्रिमिनल ग्रुप्स यू नो दे आर नॉट इवन प्रेजेंट नेशन वाइड, माने वो दो तीन स्टेट्स को कवर करते हैं, ये ग्रुप्स आके ये सब अनाउंस कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक एक्सटेंशन ऑफ ईगो है कि हम बड़े हैं, हम ये सब कर सकते हैं और हमें हिम्मत है ये सब करने की, हमारा तो खौफ ही चला गया है। तो अगेन यू नो दैट इज व्हाट लेड टू द मर्डर ऑफ सच अ बिग पर्सनैलिटी। अब आप सोच सकते हैं कि लोगों के अंदर और भी कितना खौफ पैदा होगा जिनको ये एक्सट्रॉट करना चाहते होंगे, और तो और कितने ज़्यादा जो यंग यंग लड़के होंगे जो इनके साथ और जुड़ेंगे कि अरे इसने इतने बड़े को मार दिया तो बहुत बड़ा आदमी है, हिम्मत देख मैं भी इसके साथ जाना चाहता हूँ। तो दैट्स द काइंड ऑफ कल्चर दैट इज डेवलपिंग आउट देयर। एंड फाइनली एक और चीज़ है कि नॉट फाइनली, मेरे पास दो और पॉइंट्स हैं। एक माने ये सब मैंने थोड़े से पॉइंट्स नोटिस किए, इट इज़ नॉट अबाउट द कल्चर। कल्चर तो वही है, आप समझ गए कि यू नो छोटे छोटे गैंग्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, कोई ऊपर से संभालने वाला नहीं है, इन द सेंस आई मीन दिस माइट बी अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, बट कोई ऊपर से एंटरप्राइजिंग लीडर नहीं है इनके पास, तो आपस में लड़ते रहते हैं, वायलेंस बढ़ता जा रहा है और ईगो का मामला है, तो ये अपने आप को बड़ा से बड़ा दिखाना चाहते हैं, कई बार एग्जैजरेट भी करते हैं, और उस चक्कर में जो है यूथ इनके साथ और भी एसोसिएट हो जाता है, तो ये सब एक साइकिल बनता जा रहा है जहाँ पे वायलेंस इंक्रीज कर रहा है, और and they are also getting very brutal and काफ़ी ज़्यादा in the sense कोई डर नहीं रह गया इनके पास इतने बड़े एक ऐसे सिंगर को मार देना। तो खैर जो दूसरे मैंने पॉइंट्स नोटिस किए थे ना कि यू नो इफ़ यू लुक एट, और इसके ऊपर भी इनफैक्ट ये सिद्धू मूसेवाला के ऊपर भी ये चार्ज उठाया गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्राइम और गन्स इनके, इनफैक्ट इसके ऊपर केसेस भी लगे थे कि ये लोग अपने गानों के थ्रू प्रमोट करते हैं, तो द थॉट दैट कम्स इन इनकी ये कहाँ से आता है, आई मीन वेर डू यू गेट इंस्पायर्ड, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है ये सब गाने लिखने के लिए, क्योंकि अपने कल्चर में इस टाइप का कभी था नहीं। तो ये मेरा ओपिनियन है, आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ से जो पंजाब वगैरह से इतने सारे लोग जो माइग्रेट करके US गए, कैनेडा गए, ऑस्ट्रेलिया और यू नो लंडन, तो वहाँ पर ये वाला कल्चर था, जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है जिन्होंने रैप म्यूजिक निकाला था, तो वहाँ का ये कल्चर रहा है अबाउट गन्स, अबाउट यू नो राइवलरीज, जहाँ पे एक दूसरे को मार रहे हैं और उसी के बारे में, राइवलरीज के बारे में गाने लिख रहे हैं, कोई मर रहा है तो गाने लिख रहे हैं, और ये सब आपने नाम सुना होगा, टूपाक करके काफ़ी फेमस सिंगर है और उसका ओपोनेंट था नोटोरियस BIG, सेम स्टोरी, वो एक ही कम्युनिटी से नीचे आते थे, शुरू में दोस्त भी थे, कुछ आपस में लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हुई और माने आपस में दोनों को खैर मार दिया गया था, दोस केसेस आर स्टिल अनसॉल्व, बट ये काफ़ी एक एग्जैक्टली वैसा का वैसा वो कल्चर वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया है। सो इट सीम्स लाइक यू नो द पंजाबी रैपर्स हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यू नो द अमेरिकन रैपर्स, और नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग्स और इन टर्म्स ऑफ द लिरिक्स, बट ऑल्सो आई थिंक वो एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस वहां से लेकर यहां पे कैरी ऑन कर गया है। तो एक तो वो चीज हो गई है, दूसरी चीज मेरे को ना इस केस से सुशील कुमार का केस याद आ गया था। तो सुशील कुमार के केस में भी अगर आप देखेगा, इतना फेमस आदमी, और अगेन वो भी हरियाणा रीजन से ही आता है, एंड इतना फेमस आदमी और यू नो इतना सेलिब्रेटेड बॉक्सर, ओलंपिक में मेडल जीत के आया था इंडिया के लिए, और वो वर्ल्ड ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व हो गया इस हद तक कि उसने एक मर्डर कमिट कर डाला, राइट। तो आई एम नॉट सेइंग कि सिद्धू मूसेवाला भी इन्वॉल्व है इसमें, ऑल आई एम सेइंग इज दैट प्रोबेबली यू नो हम लोग के यहाँ ऊपर नॉर्थ इंडिया में वैसे भी एक कल्चर है वेर यू नो पॉलिटिक्स एंड क्राइम आर एनीवेज टुगेदर, बट ऑल्सो यू नो देर इज दैट एलिमेंट ऑफ ग्लैमर विच इज इन्वॉल्व, जहाँ पे दोनों साइड जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट, कहीं ना कहीं आप वो फोर्सफुली करें या अपने मन से करें वो बात अलग है, बट वो काफ़ी ज़्यादा एक इंट्रैक्शन हो जाता है। इट कैन ऑल्सो यू नो बी अ फंक्शन ऑफ मनी, क्योंकि न्यूज़ में ये भी आ रहा है, कई सिंगर्स बोल रहे हैं कि यू नो सिंगिंग इंडस्ट्री जो पंजाबी सिंगिंग इंडस्ट्री है, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सटॉर्शन के थ्रेट्स आते हैं ये सब पंजाबी गैंगस्टर्स के थ्रू, तो वो लोग कह रहे थे कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनली। अब ये सॉल्व क्यों नहीं हुई है आज तक का, दैट इज़ फॉर दी पुलिस टू डिसाइड, बट दिस वॉज समथिंग विच वॉज यू नो कि ये वैसे बॉलीवुड के टाइम पे हुआ करता था 1990s में, जब दाऊद वगैरह फाइनेंस करते थे इंडियन मूवीज़ को, बट यू नो द प्रॉब्लम वाज डिफरेंट। ये एक रिसर्जेंस हो रहा है उस चीज़ का कि वेयर रादर देन टारगेटिंग बॉलीवुड, नाउ अनदर यू नो ग्रुप ऑफ सेलिब्रिटीज़ विच इज़ द पंजाबी आर्टिस्ट, अभी उनको टारगेट किया जा रहा है, एंड दैट टू स्पेसिफिकली बाई दी पंजाबी गैंग्स देमसेल्व्स, लाइक इन द सेंस गैंग्स हु बिलोंग टू दैट सेम एरिया। सो दिस इज़ काइंड ऑफ सरप्राइजिंग, एंड इसका कोई भी कनेक्शन हो सकता है, बट होपिंग दैट ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, एंड हुएवर हैज़ डन दिस क्राइम यू नो शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। एंड ऑफ कोर्स हमने काफ़ी बड़ा सिंगर, एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं भी काफ़ी बड़ा फैन हूँ. तो रेस्ट इन पीस सिद्धू मूसेवाला.